आज की शाम हम जिसे पाम संडे कहते हैं, खजूरों का अतवार कहते हैं, जिस बात पर गौर करवाना चाहता हूं कि आज से हम शुरू मैं कर रहा हूं इस बात पर टीच करना कि आज की शाम से लेकर अगले इतवार की सुबह तक पूरा हफ्ता यरूशलम में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, यीशु कहां पर गया, उसने क्या कहा, उसने क्या किया और क्या वहां पर वाक्य हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आज जो यहां पर मौजूद है सुर की इबादत में, अगली किस्त में हम देखेंगे कि सोमवार को क्या हुआ, उसके अगले दिन देखेंगे सोमवार के बाद क्या आता जी, मंगल को क्या हुआ, बुध को क्या हुआ, जुमेरात को क्या हुआ, जुमे को क्या हुआ और हफ्ते की रात क्या, सारा दिन हुआ और फिर इतवार की सुबह देखेंगे। सबको ड्रामे पसंद है क्या? सब प्रोग्राम देखना पसंद करते? कोई भी पसंद नहीं करता कि शुरुआत की एक किस्त देखकर फिर एंड में देखा जाए कि क्या हुआ और बीच में भूल जाए। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं कि इस इतवार से लेकर आने वाले इतवार तक पूरे इन सात दिनों में क्या हुआ। तो आज शुरुआत की जा रही है जिसे कहते हैं यीशु मसीह का यरूशलम में शहाना दाखला। शहाना दाखला इसे इसलिए कहा जाता है, पहली बात, यीशु मसीह क्या है जी, दाऊद की नस्ल से वो आने वाला बादशाह जिसके बारे में नबूवतें की गई थी कि वो दाऊद की नस्ल और असल से होगा और दाऊद के घराने से एक कौम पर निकलेगी जिस पर खुदा की गयूरी होगी, खुदा का फिर्द होगा, खुदा की कुदरत होगी और खुदा की बादशाही उसके कंधों पर होगी और वो अजीब बशीर खुदा कादर अबियत का बाप और सलामती का क्या होगा जी, शहाना होगा। सो हम यीशु के शहाना दाखले के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो यरूशलम में दाखिल हुआ क्योंकि नबियों की मार्फत कहा गया था, नबियों ने इसके बारे में पहले नबूवत की थी कि एक बादशाह क्या आएगा जी, एक इस दुनिया में आएगा और उसकी निशानी बताई गई थी पुराने अहदामा में कि वो गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलम में दाखिल होगा। आप सब हैरान होंगे कि क्यों गधी का बच्चा। पहली बात, जितने बादशाह दुनिया में देखते हैं सब हाथियों पर और घोड़ों पर सवार होकर आते हैं। हाथी और घोड़े उसकी कुदरत को और बादशाह की ताकत को और इख्तियार को क्या करते हैं जी, जाहिर करते हैं। यीशु मसीह जब आज के दिन, आज से 2000 साल पहले से ज्यादा का अरसा है जब वो यरूशलम में दाखिल हुआ, वो क्यों घोड़े पर सवार होकर नहीं आया, कभी सोचा आपने? क्यों वो हाथी पर बैठकर नहीं आया, क्यों उसके साथ रथों के रथ नहीं आए, क्यों उसके लिए और जो एक बादशाह के लिए करना चाहिए नहीं किया गया। पहली बात, जब कोई बादशाह घोड़ों पर सवार होकर आता है तो वो जंग के लिए आता है। किसके लिए आता है जी, जंग लड़ने के लिए। तो यीशु मसीह जंग लड़ने के लिए नहीं आया, जंग लड़ने के लिए नहीं आया। लिखा क्या है जी, सहूद की बेटी से कह के देख तेरा बादशाह गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है और वो क्या है जी, हलीम है। क्या है जी, हलीम। इस वक्त जब हम इस दिन को मना रहे हैं, यीशु मसीह हलीम बादशाह के तौर पर गधे के बच्चे पर सवार होकर आया है क्योंकि वो जंग करने नहीं आया, वो बदला लेने नहीं आया, वो अदालत करने नहीं आया, वो तबाही और बर्बादी या अपने फरिश्तों से दुनिया को फना करने नहीं आया, बल्कि वो क्या आया है, बादशाह के तौर पर, घोड़ों पर नहीं बल्कि गली के बच्चे पर अमन का पैगाम लेकर आया है, सुलह का पैगाम लेकर आया है। तो पहली बात, वो बादशाह है क्योंकि उसकी नबूवत की गई थी कि वो बादशाह होगा, बादशाह है। दूसरी बात, वो घोड़े पर नहीं आया क्योंकि वो जंग लड़ने नहीं आया। तीसरी बात, वो क्यों गधे पर सवार होकर आया है, इसलिए क्योंकि वो अमन का शहजादा है, वो सुलह का पयादा है और वो सुलह का पैगंबर है, वो सुलह का क्या है, जिस सिपाह सवार है और उसके लिए नारे क्यों लगाए जाते हैं, होशियाना, इब्ने दाऊद को होशियाना, होशियाना का मतलब है कर्म करके अभी निजात दे। इसका मतलब क्या है? कर्म करके हमें निजात दे, रहम करके हमें निजात दे, हमें छुटकारा दे। हालेलुया का मतलब है खुदा की तारीफ हो। होशियाना का यूनानी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब क्या है जी? कर्म करके हमें निजात दे। तो लोग उसे पुकारते हैं निजात दे, निजात दे, हमें छुड़ा, हमें वो बादशाह होते हुए जैसे दाऊद बादशाह था हमें भी रहाई दे। तो इस दफा तो यीशु मसीह हलीम बादशाह के तौर पर गधे पर सवार होकर आया है, लेकिन आपकी और मेरी और बहुत से लोगों की ख्वाहिशों को जो वो पूरा करेगा, एक वक्त आने वाला है जिसमें वो कहां पर आएगा जी? किस पर सवार होकर आएगा जी? सफेद घोड़े पर। किस पर जी? सफेद घोड़े पर। तब वो तय करने आएगा, हम उसके साथ होंगे, आसमानी फरिश्ते उसके साथ होंगे और पुराने अहदनामा के तमाम ईमानदार उसके साथ होंगे, आसमानी लश्कर उसके साथ होंगे। जब हम आसमान पर जमीन, आसमान से जमीन पर आएंगे तो वो क्या करने को आएगा? वो शैतान के कामों को फना करने के लिए आएगा। तब वो सुलह के लिए नहीं आएगा, तब किस लिए आएगा जी? रूहानी जंग को जीतने के लिए, के शैतान का सफाया करने और उसे आग की झील में फेंकने ताकि वो अपने बादशाह ऐलान कर सके। इसलिए ये बड़े फर्क को याद रखने की जरूरत है। पहले वो अमन का पानी बनकर आया, उसके बाद फिर वो लश्करों का खुदा बनकर आएगा। लश्करों का खुदा क्यों से कहा जाता है? ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, ऐ लश्करों के रब, ऐ अहद के संदूक। जो अहद के संदूक के साथ चलता था, जो दिन में बादल का सतून और रात में आग का सतून था, जो उनके आगे आगे चलता था, वो लश्करों का खुदावंद खुदा कौन है जी? यीशु मसीह। अब वो गधे के बच्चे पर सवार कर होकर आया क्योंकि वो सुलह करवाने आया है। फरिश्तों ने उसके बारे में क्या कहा था? आग में बाला पर खुदा की तमजीद हो और उन आदमियों से जिनसे खुदा राजी है क्या हो जी? सुलह। वो सुलह के लिए आया। दोबारा जब वो आएगा मकाशवा 12 बार, तो मकाशवा 7 बार, मकाशवा 8 बार, मकाशवा 19 बार, यानी पूरी की पूरी जो मकाशवा की किताब का एक एक आयत का खोल पूरा होगा, तब वो लोहे के डंडे के साथ आसमानी फौजों के साथ घोड़े पर सवार होकर आएगा और फिर वो शैतान का, मौत का, बदी का, गुनाह का, तारीकी का, बीमारी का, इस दुनिया में हर एक चीज का सफाया करके आसमान से क्या उतरेगा जी? नया यरूशलेम उतरेगा। और वहां पर भी खजूरों का क्या मनाया जाएगा जी? जुलूस निकाला जाएगा। और उस जुलूस में सिर्फ आरवाला की न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी के लोग नहीं होंगे, वहां पर कौन कौन से लोग होंगे? हर एक कबीला, हर एक जुबान, हर एक कौम जिनमें से लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया है, वो सब उस खजूरों के जुलूस में इकट्ठे होंगे। एक जुलूस हम यहाँ पर आज सिर्फ मना रहे हैं यादगारी के तौर पर, एक जुलूस मनाया जाएगा जब हम आसमान से जमीन पर आएंगे और वहां पर तमाम करोड़ों अरबों फरिश्तों, कौमों, जुबानों और मुल्कों के साथ जिन्होंने यीशु मसीह को खुदा का बेटा, अपना निजात दहिंदा और खुदा का भेजा हुआ माना है, वो सब मिलकर क्या करेंगे? खुदावंद खुदा के नाम से जो आता है उसकी तमजीद हो, खुदावंद खुदा के नाम से जो आता है उसकी तारीफ हो, आग में बाला पर और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी, जिन्होंने बर्रे के खून को अपने ऊपर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए क्या किए जाएंगे जी? यरूशलेम। तो आज मैं चाहता हूं इस हवाले को जो पढ़ा गया है, ये सारी मैंने आपको दो बैकग्राउंड बताई है कि आज की शाम यरूशलेम में तब्दीली की शाम थी, आज की शाम तहलका मचाने वाली शाम थी, आज की शाम हैरान करने वाली शाम थी कि खुदा का कलाम अंबियाए अकबर और अंबियाए असगर जितने रसूल और नबी थे उन सब की जो 7,000 से ज्यादा बातें हैं वो पूरी हुई, उस कलाम को पूरा होते हुए यरूशलेम में देखा जा रहा है। सो इस शाम में तीन किस्म के लोग थे, कितने किस्म के लोग थे जी? तीन। पहले किस्म के वो लोग थे जो यीशु मसीह के शिगिर्द थे, जिनको यीशु ने कहा जाना शहर में और तुम्हें एक गधी का बच्चा बड़ा हुआ मिलेगा, उसे लेकर मेरे पास आना, अगर कोई तुमसे पूछे तो कह देना किसको जरूरत है जी, खुदावंद की। ये वो लोग थे जो यीशु मसीह के ताबेदार, यीशु मसीह का खौफ, यीशु मसीह से मोहब्बत करते थे और यीशु मसीह के पीछे चलते थे। दूसरा ग्रुप वो ग्रुप था जिन्होंने क्या कहा, इब्ने दौर होशियाना, इब्ने दौर होशियाना, और उन्होंने नारे लगाए, कपड़े बिछाए, दरख्तों की डालियां तोड़ तोड़ कर, खजूर की डालियां तोड़ तोड़ कर इस हवाले को चारों अनाजी में हम देखते हैं। मत्ती से लिखता है, लूका से लिखता है, तो पतरस और मरकुस इसे लिखता है और यूहन्ना इसे लिखता है। तो दूसरा ग्रुप कौन का था, नारे लगाने वाला। नारे लगाने वाले, उसे बादशाह कबूल करने वाले, उसको खुशी से कहने वाले, ये वही है, ये वही है, क्योंकि उसके मौजदा देखकर उसके पीछे आए थे। और तीसरा ग्रुप वो ग्रुप था जो इस बात से राजी नहीं था कि ये क्या करने वाला है, तब्दीली लाने वाला है। जब हम मरकुस की इंजील को पढ़ते हैं तो मरकुस की इंजील में लिखा है, जब हम मरकुस 11 बाब उसकी पहली 11 आयात को पढ़ते हैं तो 11वीं आयत में लिखा है, वहां पर फरीसी क्या कहते हैं कि सारा जहान इसके पीछे हो लिया है, सारे के सारे इसके पीछे हो गए, इंतजाम करना चाहिए, इसको मरवा देना चाहिए, इसको कत्ल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान का बायस है। सो कितने किस्म के लोग हो गए जी, यीशु मसीह की प्रस्तुत रूह और सच्चाई से करने वाले उसके शिगिर्द, एक बड़ा हजूम जो सिर्फ नारे लगाने वालों में थे, क्योंकि यही नारे लगाने वाले ठीक 5 दिन बाद जोर जोर कर चला चला कर कहेंगे, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, हाँ हाँ ये वो ही है। इनमें से बहुत से झूठे गवाह खड़े हो जाएंगे, जो झूठी गवाही देंगे, हाँ हाँ इसने ये कहा था, हाँ मैंने भी भाई से सुना था, हाँ ये मेरे सामने इसने ये कहा था, वाकया ही ये सच है, और वो सब पैसों में बिकने वाले लोगों का बड़ा हजूम, जो होटो से तो उसको बादशाह बादशाह खुदावन खुदा कहकर पुकारते हैं, और 5 दिन बाद जुमेरात की शाम जब उसे हिरासत में लिया जाएगा तो ये सब वहां पर इकट्ठे होकर कहेंगे, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। तो ये है दूसरा ग्रुप, और तीसरा ग्रुप फकीहों और फरीसियों का, जो यीशु से घिन रखते थे, जो यीशु से नाराज थे, जो यीशु से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि यीशु उनको बताता था कि वो कितने गलत हैं। तो आज इन तीन ग्रुपों में से हम किस ग्रुप में अपने आप को देखते हैं, शिगिर्दों के ग्रुप में, लफ्जी तौर पर होशियाना होशियाना, और आज के बाद फिर अगले साल मिलेंगे, या फिर तीसरा ग्रुप। उम्मीद है कि हम पहले ग्रुप में हैं, जो उसके शिगिर्द थे, जो उससे प्यार करते थे, जो उसके पीछे चलते थे, जो उससे डरते थे, जो उसकी गवाही देते थे, जो उसकी दावेदारी करते थे, क्योंकि दो ग्रुप एक उससे नफरत करते थे क्योंकि वो गलत थे और अपनी गलती दुरुस्त नहीं करना चाहते, वो कौन थे जी? फकीर फरीसी। और एक वो ग्रुप था जो सिर्फ चाहते थे उसे अपना बादशाह बनाना क्योंकि वो उनकी जरूरियात को पूरा करता था, वो उनके लिए अजीब अजीब काम करता था, उन्होंने रोटियां खाई थी, उन्होंने अजीब अजीब काम देखे थे और वो सिर्फ दिखावे की। तो आज इस खजूरी अखबार में हम प्रस्तुत अबादत क्यों यहां पर रखे हुए हैं? यरूशलम में यीशु मसीह का क्या है जी? शहाना दाखला, यानी कि वो शहंशाहों का शहंशाह और बादशाहों का क्या है जी?
बादशाह।
तो क्या वो बादशाह हमारे दिलों में राज कर रहा है? हमने अपने दिल के तब पर उसे कहां पर जगह दी है? मेरी दुआ है कि हम सब शिगिर्दों की तरह उसके पीछे चले। वक्त आएगा कि हम उसके मुनकर होंगे, वक्त आएगा कि हम डर कर छुपेंगे, वक्त आएगा कि हम मायूस होंगे, हमारा ईमान कमजोर होगा, लेकिन हम उसे छोड़ देंगे, वो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं। तो अगर यीशु मसीह हमारा बादशाह, जैसे हमने गाया है, बादशाह 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 बादशाह, रब खुदा मद बादशाह, मेरा बादशाह मेरा बादशाह। अगर वो हमारा बादशाह है तो हमने उसको देख के इस दर्जे पर जगा दी है। उन दो ग्रुपों को भूल जाए, फरीसियों को और लबों से प्रस्तुत करने वाले लोगों को। मैं चाहता हूं कि हम वो बने जिनको उसने कहा अपने शिष्यों से जाओ जाकर जो मैं कहता हूं वो करो, और उन्होंने किया। तो आज की शाम यीशु मसीह, जैसे हमने शाम का दिन शाम का वक्त चुना किया है, यीशु मसीह को यरूशलम में शाम पड़ गई और फिर वो कहां पर गया? बैतनिय्याह, जो नजदीक एक गांव है, वहां पर जाकर रात गुजारी। ये बैतनिय्याह जहां पर लाज़र रहता था, ये बैतनिय्याह जहां पर पतरस के रिश्तेदार रहते थे। दरअसल इस गांव में मुझे जाने का मौका मिला। मैं इस गांव में गया जहां पर यीशु मसीह ने पतरस की सांस को, जो उसकी सासू मां थी, उसकी सास का बुखार लाया। उस घर में मैंने जाकर देखा। इस गांव में जहां पर यीशु मसीह ने पहला पैगाम दिया, जहां पर उसने कहा खुदावंत का रूह मुझ पर है, उसने मुझे इसलिए चुना के गरीबों को खुशखबरी, अंधों को बनाऊं और कुचले मुंह को आजाद करूं और खुदा के कलामे साले मकबूल की क्या करूं जी? बनाने करूं। और उसने मुझे इसलिए भेजा है कि आजाद करूं। वो पैगाम जब यीशु मसीह ने दिया तो ये किस इलाके में कहीं? बैतनिय्याह के एक हैकर में। तो आज हमारे दिलों के तब पर कौन बैठा है जी? कौन बैठा जी? वाकई सच्ची बात है, कौन हमारे दिलों के तब पर बैठा जी? शाहरुख खान नहीं बैठा? कोई और अदाकार? कौन बैठा है? राजों का राजा यीशु मसीह। अगर वो बैठा है तो फिर हम अपने बादशाह के ताबे हैं। हम अपने बादशाह की इज्जत करें, हम अपने बादशाह के गीत गाएं, हम अपने बादशाह की तारीफ करें और शुरुआत करनी है। कौन कौन चाहता है कि पूरे सात दिनों में क्या हुआ, आज की शाम से लेकर इतवार की तड़के सुबह तक, कौन कौन देखना चाहता, सीखना चाहता है? पक्की गल ना? सुबह में 5:30 बजे बाद में भी कौन आएगा? 5 बजे बाद में भी कौन आएगा? लागेगा पता। और जिन्होंने उन्होंने हाथ खड़े कर ले, जिन्होंने नहीं उन्होंने को देखना है। क्या ऐसा बादशाह हम अपना बनाते हैं इसको? हर सुबह 5 बजे चर्च लगेगा तो मैं हर सुबह बताऊंगा कि यीशु अब कहां पर था, इस दिन क्या हुआ, वो कहां पर है, क्या बातचीत हो रही है। जिस तरह नागर को मेसरी करना चाहते, अगर सीखना चाहते हो तो फिर आकर हर सुबह शामिल हो सकते हैं इस इबादत में, खासकर जो यहां पर रहते हैं। सो आए हम खुदा के सुर झुके। अगर सब इन तरफ देखें, अगर यीशु मसीह हमारे दिलों पर बैठा है तो फिर उसको वो दर्जा दें जिसके वो लायक है। कहीं ऐसा ना हो इस हवाले में हम उन लोगों की तरह सिर्फ कहने वाले बन जाइए, होशियाना अगले साल मिलेंगे, होशियाना जिंदी कपड़े नवे ते दिल पुराना, होशियाना फिर रहाई नहीं होगी, फिर आजादी नहीं मिलेगी, फिर हम अपने आप से उजाग नहीं होंगे, हम अपने आप ही में झगड़े रहेंगे। अगर हमारा दिल कपड़े नए हो और दिल पुराना हो, सो आज हम खुदा के जुड़ चुके हैं, दुआ करें सब एक हर एक की आंख बंद हो जाए, हर एक जुबान खुदावन के सुर खुले और अपने अपने दिलों पर गौर करेंगे कि हमारे दिलों के तख्त पर कौन बैठा है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कितनी बादशाह की इज्जत और एहतराम है, अगर वो यहां पर होता तो हमारी बोलती बंद हो जानी थी। खुदावन खुदा हम सबको रूह और सच्चाई से अपनी प्रस्तुति करना सिखा, ताकि हम सिर्फ तुझे बादशाह कहने वाले ना बने, ताकि सिर्फ तेरे नारे लगाने वाले ना बने, ताकि सिर्फ आज के दिन फूल फेंक कर, गला बिठा कर, गीत गा कर, शोर पा कर, नारे लगा कर ही तुझे बादशाह नहीं बल्कि अपना हकीकी बादशाह तौर पर दिल पर मान कर, दिल से मान कर तुझे अपने दिल के तौर पर बैठाए। आपकी तेरा खौफ तेरी ताबेदारी हम सब की जिंदगियों में हमारे साथ रहे। खुदावंद अगर यहाँ पर आज कोई फकीरों फरीसियों की तरह या उस शोर पाने वाले लोगों की तरह है तो खुदावंद अगर मुझ में ऐसी कोई कमी है तो खुदावंद उसे दूर कर, ताकि मैं तेरे शिगिर्दों की तरह तेरे नक्शे कदम पर चलने वाला बनूं। खुदावंद आज की शाम एक एक दिल को जो सख्त है नरम कर, आज की शाम अगर कोई फरेब में है तो खुदावंद खुदा वो फरेब बदल जाए, ताकि खुदावंद तू हम सब के दिलों की आंखों को रोशन करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगता हूं।